Hare Krishna. So again, that question, in which language? Okay, the evening ones, we generally do it in Hindi. How many of you don't understand Hindi? Okay. So, okay, many of the girls don't understand Hindi. Who will translate for them? Jamuna Priya? Later. Okay. So, those who want English translation, sit around Jamuna Priya. You can move to the corner, Jamuna, at the side, then they can come and sit around you. And for the boys who doesn't, how many of the boys don't understand Hindi? Most of Hindi, bujhte paro? Okay. Tumi Hindi bujhte paro? Okay. Thik ache, then there is no problem. Most of the boys can understand Hindi. Okay, Hare Krishna. So I'm sorry to be late. Got stuck with some work, I'm sorry. थोड़ा देरी हो गया. मैं 5:30 बजे के पहले आने का कोशिश कर रहा था, पर थोड़ा काम के वजह मैं आ नहीं सका. जब ऐसे मेरा आने, जब तुम सब इकट्ठा बैठे हो और कुछ काम के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो, तो क्या करना चाहिए उस समय? कीर्तन करना चाहिए. तो कीर्तन करना चाहिए, तो आज कीर्तन क्यों नहीं कर रहा था? हाँ, बोलना होगा क्या? जब भी समय मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा, जब भी फुर्सत मिलेगा, क्या हर समय भगवान के नाम कीर्तन करते रहना. भक्ति का एक अंग है अबर्थ काल त्याग. इसका मतलब है कभी काल, समय का नष्ट ना हो, अपचय ना हो, ये ख्याल रखना. अगर अकेला हो, कोई कुछ करने का नहीं है, तो क्या करना है? या तो भगवान का नाम जपते रहो, नहीं तो भगवान के बारे सुनते रहो या किताबें पढ़ते रहो. और जब सब इकट्ठा बैठे हो, तब भी तुम सब एक साथ बैठ के भगवान के जो प्रभुपाद की किताबें पढ़ सकते हो. एक व्यक्ति पढ़ेंगे और जो बाकी सब सुनेंगे, ऐसे एक एक करके हम भगवान का ये किताबें पढ़ सकते हैं. ठीक है. और जब इकट्ठा रहते हो, तब कीर्तन करना चाहिए. जैसे आज क्या करना चाहिए था, कल क्या करोगे? अच्छा रहेगा अगर प्रोग्राम 5:30 बजे है, तो 5:15 बजे यहाँ आ जाएगा और बैठ के कीर्तन करें. जब भी आके बैठोगे, बस कीर्तन करते रहेंगे. ठीक है. अच्छा. और लास्ट बार जब पिछले बार जब मैं आया था, तो मैं क्या बोला था, किसको याद है कौन कौन विषय में हम चर्चा किया था? ओके अनिरुद्ध. अच्छा, भगवान कौन है? अच्छा, और भगवान हाँ, शिव जी के बारे में बताया था. ज्योति, अच्छा तुम बताओ, निर्गुण ब्रह्म कौन है, क्या है? हाँ, निर्गुण ब्रह्म क्या है? भगवान का अंग का ज्योति है. हाँ? भगवान का शरीर से जो ज्योति निकलता है, वो है ब्रह्म ज्योति. हाँ, और उस ज्योति ही आध्यात्मिक जगत का प्रकाश, आत्मा मतलब वो ज्योति है भगवान का शक्ति, जिस शक्ति के प्रभाव से इस भौतिक जगत का रचना हुआ है, वो है निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण का मतलब क्या है? निर्गुण का मतलब ओके सारे गुण के परे। ओके वेरी वेल ज्योति पारुल, तुमको कुछ कहना है? जिनका कोई गुण नहीं है वो निर्गुण है। बहुत अच्छा ओके हाँ, पर तुम बताओ भगवान का क्या कोई गुण नहीं है? तो निर्गुण का मतलब भौतिक गुण उनमें नहीं, भौतिक गुण के द्वारा भगवान प्रभावित नहीं होते। ये भौतिक गुण क्या है? ये भौतिक गुण का, ये गुण शब्द का और एक अर्थ क्या है पता है तुमको? हाँ सत्य, वो तो है गुण। गुण का मतलब है क्वालिटीज, विशेषता। और गुण का और एक अर्थ होता है रस्सी। तो रस्सी से बांध के बांधते हैं ना, तो वैसे ही इस भौतिक जगत का जो गुण है उस गुण के द्वारा हम सब बंधे हुए हैं। हमारा बंधन का जो गुण है, बंधन का कारण क्या है, किसके द्वारा हम हमारा बंधन हो रहा है? माया के द्वारा। ओके और माया कैसे हमको बांध के रखे हैं? ये तीन गुणों के द्वारा। जब तक हम इस गुणों के द्वारा प्रभावित रहते हैं तब तक हम इस भौतिक जगत के बंधन में फंसे हुए रहते हैं। पर जब हम ये भौतिक गुण के गुण से मुक्त हो जाते हैं तो हम इस भौतिक जगत से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। तो इस गुण का बंधन से मुक्त होने का उपाय क्या है, तरीका क्या है? भगवान के शरण लेना, भगवान को शरण लेना। भगवान को शरण लेने से हम इस भौतिक जगत का बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, इसका एक दृष्टांत हम पहले दिया था, किसको याद है कैसे हम भगवान को शरण लेने से इस भौतिक जगत का बंधन से मुक्त होते हैं? किसको याद है? हम कोई राजा के बारे में कुछ कह रहा था। क्या बताओ? कैदी जब राजा का शरण लेता है तो क्या होता है, उसको कैद से छुटकारा मिल जाता है, है ना? तो वैसे ही राजाओं का राजा कौन है? भगवान। और कारागार कौन सी, असल कारागार कौन सी कारागार है? इस भौतिक जगत, इस भौतिक जगत एक कारागार है। और हमारा अपराध क्या है? हम भगवान को कानून नहीं माना है, कानून तोड़ा है। भगवान को कानून तोड़ने का मतलब क्या है? भगवान को भी अस्वीकार करना, राजा को कानून। अब जब हम नहीं मानते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? हम राजा को नहीं मानते हैं, है ना? अगर राजा को मानते हैं तो राजा का कानून को भी हम मानते थे। तो हम भगवान को कानून नहीं माना। भगवान का कानून का और एक नाम क्या है? धर्म। धर्म का अर्थ क्या है? भगवान का दिया हुआ कानून। भगवान एक है, भगवान का कानून भी एक है, है ना? तो अब बताओ धर्म कितना है? धर्म भी एक है। असल धर्म क्या है? भगवान को दिया, भगवान का दिया हुआ कानून। ये कानून जब हम मानते हैं तो हम भगवान के वश में रहते हैं, भगवान को शरण में रहते, भगवान के शरण में रहते हैं। पर जब हम भगवान को कानून नहीं मानते हैं तब हमें दंड मिलता है। दंड कहाँ मिलता है? जो कानून नहीं मानता है, जो अपराधी हैं उसको कहाँ दंड मिलता है? कारागार में दंड मिलता है। तो हमें भी इस भौतिक जगत रूप कारागार में दंड मिल रहा है, या क्या दंड मिल रहा है या मजा मिल रहा है? मजा मिल रहा है। अच्छा, मजा मिल रहा है या सजा मिल रहा है? हाँ, मंदिर में आके मजा मिलता है। तो मंदिर में क्यों मजा मिल रहा है? क्योंकि मंदिर में आके भगवान को शरण मिलने का अवसर मिलता है, भगवान को शरण लेने का याद आता है, है ना? तो भगवान को शरण में आ गए सब, आए हैं, बहुत अच्छा। तो आप भगवान का शरण में ही रहना चाहिए। भगवान का शरण में रहने से फायदा क्या होता है? और कोई चिंता नहीं रहता है। जैसे हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तो हमारा कोई चिंता था क्या? नहीं, कुछ चिंता था। क्यों नहीं था? क्यों नहीं चिंता था? क्योंकि पिता माता माता पिता के शरण में थे। तो जो कुछ हमारा चिंता था वो उन लोगों ने कर रहे थे, है ना? तो अब भी अगर हम ये चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, हम अगर मजे में रहना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान को शरण लेना चाहिए। और भगवान को शरण लेने से और कोई चिंता नहीं है। भगवान को शरण लेने से क्या होता है? भगवान हमें रक्षा करते हैं, भगवान हमें हमारा देखभाल करते हैं। इसलिए भगवान का शरण में हर समय रहना चाहिए। अगर कोई मुसीबत भी आता है तो भी कोई हर्जा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे हम देखते हैं वृंदावन में जो कृष्ण का भक्त थे, ब्रजवासी, उन लोगों का मुसीबत होता था। देखिए, और वृंदावन में ही नहीं, केवल मथुरा में भी कंस का माता पिता का कितना कष्ट, कृष्ण का माता पिता का, माता पिता को कंस ने कितना कष्ट दे रहा था। पर उनको क्या कोई मुसीबत हो रहा था, कष्ट हो रहा था? सही, कितना कष्ट, कारागार में डाल दिया था, कितना कष्ट हो रहा था। और पर उनको कुछ कष्ट नहीं क्यों हो, नहीं हो रहा था? क्योंकि भगवान के चिंतन में मगन रहने से और कोई चिंता मन में नहीं आता है। जैसे अगर हम कोई कठिन और कोई मुश्किल में अगर हैं, कठिनाई में अगर हैं, परंतु हम हमारा मन में मन और को ही है। जैसे नींद में हम सपना देखते हैं, नींद में जब हम सपना देखते हैं, सपना देखने के समय अगर हम सपना देख रहे हैं कि हम राजा बन गए, हम जमीन में सोए हुए हैं, पेट में खाना नहीं है, भूखा है, जेब में पैसा नहीं है, फिर जब हम ख्वाब देखते हैं कि हम राजा बन गए हैं, तो मन मन का भावना कैसा होता है? तब क्या पता रहा, याद रहता है कि मैं मेरा सोने के लिए बिस्तरा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, कुछ याद रहता है? नहीं रहता है। वैसे ही जब हम भगवान का चिंतन में मगन रहते हैं, तो इस भौतिक जगत में हमारा जो स्थिति है उसके बारे में हम कुछ हमारे कुछ भी यादगार नहीं रहते। तो इसलिए भक्तों का आप ऐसे आपात दृष्टि से अगर ऐसे मालूम होता है कि उनको कष्ट हो रहा है, परंतु असल में उनका कोई भी कष्ट नहीं होता है। जब उनके बारे में जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तब हम क्या देखते हैं? उनका कोई भी मुश्किल नहीं था। जैसे ऐसे भौतिक दृष्टिकोण से जब हम विचार करते हैं, तो हम देखते हैं पांडवों का कितना मुसीबत हो रहा था, कितना कठिनाई था उनको, बहुत सारे कठिनाई था। परंतु जब हम महाभारत पढ़ते हैं, आप महाभारत पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं, कौन नहीं पढ़े हैं महाभारत? नहीं पढ़े हैं? हाँ अच्छा, सुने हैं, पिक्चर देखे हैं टीवी में। हाँ ओके, महाभारत पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारे भारत का इतिहास है। अगर हम सब भारतवासी हैं ना, तो हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो कृष्टि है, उसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा? हमारा जो इतिहास है वो पढ़ने से, और महाभारत है हमारा इतिहास। न क्या महाभारत कोई कहानी है, महाभारत कहानी है या सच्चाई है? तो महाभारत जब हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं पांडवों को कितना, पांडवों ने कितना मजा में थे। ऐसे जैसा कि जब भीम जब बच्चा था, भीम बहुत शक्तिशाली थे बचपन से ही, और दुर्योधन और उसके भाई को बहुत पीटता था तो दुर्योधन ने भीम के साथ मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता था, तो उन्होंने सोचा कि चलो भीम को मार डालें। कितना बदनसीब, कितना बदमाश है, बचपन से ही उसका मनोभाव ऐसा, बूढ़ा मनोभाव। तो उन्होंने एक ये किया, चक्रांत किया कि हम सब भीम को विष खिलाकर, जहर खिलाकर मार डाले। भीम को खाना उसको पसंद आता था, तो एक दिन सब भीम को बुलाया, चलो भीम तुम्हारे लिए हम बहुत अच्छा मिठाई लाया है, लड्डू लाया है, परंतु उस लड्डू में जहर था, कालकूट। कालकूट विष क्या है, जो नाग का, जो सांप का जहर जो है उसको कालकूट कहा जाता है। तो कालकूट जहर मिलाकर भीम को खिलाया, और भीम भी बहुत खाया, लड्डू अच्छा था, स्वादिष्ट था, पर कुछ समय बाद भीम अचेतन हो गया। तब भीम को हाथ और पैर रस्सी से बांधकर वो जमुना में फेंक दिया, और भीम भी जमुना से बहते हुए वो पाताल लोक में गया, पहुंच गया। और पाताल लोक में कुछ वहाँ नाग सांप रहता है, तो भीम आकर उसके ऊपर वो गिर पड़ा, तो सांप ने गुस्सा के मारे क्रोधित होकर भीम को काटने लगा। तो जहर से, जहर डालने से क्या होता है, जहर कर ये होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका क्रिया नष्ट हो जाता है। तो उस सांप की दंशन से भीम को चेतना वापस आ, और भीम जब देखा वो सांप उसको काट रहा है तो उसको बहुत गुस्सा आया, तो अपना हाथ का और पैर का रस्सी तोड़कर भीम सब सांप को मारने लगा। तो ये खबर नागराज वासुकी के पास पहुंच गया, वासुकी के पास पहुंचा कि खबर पहुंचा कि एक मनुष्य का लड़का ऐसे सांप को मार रहा है। तो वासुकी ने देखने के लिए आया, और जब आया तो देखा ये भीम है, भीम था नागराज वासुकी का पोता, प्रपौत्र। तो देखकर बहुत उसका बहुत आनंद हुआ, और मेरा पोता यहाँ आ गया है। तो भीम को घर बुलाया अपना प्रासाद में, और भीम को अमृत पिलाया। तो अमृत पीने के कारण भीम का शरीर में 10,000 हाथी का बल आ गया। 10,000 हाथी, बचपन में ही भीम का इतना शक्ति आ गया और उसको बहुत सारे हीरे मोती देकर भेज दिया अपना घर। और सबको पता चल, सबको ऐसे लगा कि भीम खो गया है, कि अब भीम का मृत्यु हो गया है। सब बहुत चिंता में पड़ा हुआ था। कुंती माता रोने लगी थी, रो रही थी, और बाद में जब देखा भीम आ गया तो उसका कितना आनंद हुआ। ऐसे कष्ट के बाद जब हर्ष होता है तो कैसा होता है, वो हर्ष और भी उसका प्रभाव और भी हजारों गुण अधिक हो जाता है। ऐसे कठिनाई, विरह या ये जो मुसीबत, ये सारे मुसीबत के बाद मुसीबत होते हुए भी उनका आनंद ही आनंद मिल रहा था। और उसका विरोधी, भगवान का भक्त का जो विरोधी असुर हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उन्होंने उनका कष्ट देने के लिए कितना कोशिश कर रहा था, परंतु वो सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि भगवान अपना भक्त को रक्षा करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अब क्या बनना चाहिए? हमें भी भगवान को भक्त बनना चाहिए। भगवान का भक्त बनने से केवल फायदा ही फायदा होता है, केवल आनंद ही आनंद मिलता है। तो हम क्या फायदा उठाना चाहते हैं या नुकसान चाहते हैं? फायदा चाहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान को भक्त बनना चाहिए। हम क्या आनंद चाहिए चाहते हैं या कष्ट चाहते हैं? आनंद चाहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भक्त बनना चाहिए। और भगवान का भक्त बनने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। हम जो कुछ यहाँ कर रहे हैं भगवान का भक्ति का प्रचार करने के लिए ही कर रहे हैं। और आप लोग आ रहे हैं, भक्ति का, भक्ति प्राप्ति के चेष्टा कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा भक्त बनना चाहिए, बनने का कोशिश कीजिए। भक्ति के प्रभाव से क्या होता है? भक्ति का, भगवान को शरण लेने से एक तो इस भौतिक जगत का सारे कठिनाई का निवृत्ति होता है। क्लेशग्नि शुभदा, भक्ति का विकास के साथ एक बीज के अंकुर उद्गम की तुलना किया गया है। जब एक बीज जमीन में गिरता है, उसको पानी मिलता है, सूरज का किरण मिलता है, तो वो बीज का क्या होता है? बीज से अंकुर निकलता है। जब अंकुर निकलता है, अंकुर का दो पत्ता रहता है सबसे पहले। वो दो पत्ता क्या है? वो दो पत्ता का एक है क्लेशग्नि और दूसरा है शुभदा। क्लेशग्नि शुभदा, क्लेश घना, घना का मतलब क्या है? घना शब्द का अर्थ क्या है? घना शब्द का अर्थ है विनाश या हत्या। तो भक्ति के प्रभाव से क्या होता है? क्लेश का हत्या होता है। क्लेश मतलब कष्ट, सारे कठिनाई का विनाश हो जाता है। कठिनाई रहता है और भक्ति करने से नहीं, क्लेशग्नि। और एक विचार से तो क्लेश का निवृत्ति होता है, विनाश होता है, क्लेश का मृत्यु होता है। मृत्यु का मतलब खत्म, सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। क्लेश का मतलब कठिनाई, सारे कठिनाई का विनाश होता है। और शुभदा, शुभदा का अर्थ क्या है? शुभ का मतलब क्या है? कल्याण, शुभ। क्लेश का क्या है? अशुभ जो है उसका नाश होता है, और शुभदा, शुभ का प्रदान होता है। शुभ मिलता है और सारे कठिनाई का निवृत्ति होता है। क्लेशघ्नि शुभदा। और ऐसे भक्ति का प्रभाव से हमारा ये दो, भक्ति का भक्ति ग्रहण करने से ही ये दो काम साथ साथ बन जाता है, ये दो प्राप्ति साथ साथ हो जाता है। मतलब सारे कठिनाई का निवृत्ति होता है और सारे कल्याण या मंगल का प्राप्ति होता है। ये हो रहा है जो भक्ति ग्रहण किए हैं। कौन कौन भक्ति ग्रहण किए हैं? हाथ उठाइए, दो हाथ उठाइए, बोलिए हरि बो, हरि बो, हरि बो। तो दो हाथ, एक हाथ में क्या हो रहा है? क्लेश अग्नि, और दूसरे हाथ में शुभदा। जमुना प्रिया, इट्स क्लियर? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? सो क्लेश अग्नि शुभदा। और ऐसे भक्ति का विकास होने से और क्या क्या होता है, हम इसका विचार करते रहेंगे। क्लेश अग्नि शुभदा, शांद्रानंद न मोक्ष लोहिता लघुता कृत सुदुर्लभा, शांद्रानंद विशेषात्मा मोक्ष लघुता कृत। हाँ, शांत अकृष्णाकर्षणी च, मोक्ष लघु, हाँ, ये छह गुण, ये छह रूप से भक्ति का फल का प्रकाश होता है। पहला क्लेशग्नि शुभदा, शुभदा ये, और ये मोक्ष लघु लघुता कृत, ये मोक्ष को भी लघु कर देता है। लघु का मतलब छोटा कर देता है, छोटा, मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है भक्ति के पास। मोक्ष का मतलब मुक्ति, हाँ, तो मुक्ति जो है, मुक्ति भी भक्ति के पास एकदम तुच्छ हो जाता है। इसका विचार हम कल करेंगे। और सुदुर्लभ, ये भक्ति बहुत दुर्लभ है। और इस, और आगे बढ़कर क्या होता है? सांद्रानंद विशेषात्मा, ये एक आनंद, एक अद्भुत आनंद, एक आनंद का प्रकाश करता है भक्ति से। सारा हमारा सारा स्थिति आनंदमय हो जाता है। और कृष्णाकर्षणी च, ये भक्ति कृष्ण को भी आकर्षण करता है। कृष्ण, देखिए, कृष्ण सर्वाकर्षक है, परंतु भक्ति कृष्ण को भी आकर्षण करता है। जो भक्त हैं, भगवान मुक्ति देते हैं, भुक्ति देते हैं, सब कुछ देते हैं, सिद्धि देते हैं, परंतु भक्ति देने में भगवान थोड़ा सा सोचते हैं, देंगे या नहीं। क्यों भगवान भक्ति क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि भक्ति के भगवान वश हो जाते हैं। भक्ति देने का मतलब क्या है, क्या होता है? भगवान भक्ति के वश में आ जाती है। मतलब भक्तों का अगर भक्ति मिल गया है तो भगवान उसका उसका वश में आ जाता है। जैसे वृंदावन में होता ना, ब्रजवासी भगवान का भक्त लोग हैं, वो भगवान को बोलते हैं। राधा रानी का जब गुस्सा होता है तो राधा रानी बोलती हैं ललिता विशाखा और अपने सखियों को कि कृष्ण को मेरे पास आने को निमंत्रण, अगर वो आएगा भी तो उसको भगा देना, बोलना कि चले जाओ तुमको आने का जरूरत नहीं है। ऐसे गुस्सा के मारे भगवान राधा रानी ऐसे बोलती है। तब कृष्ण क्या करता है, राधा रानी के पास आके माफी मांगता है। ये है भक्ति का महानता। इसलिए भगवान भक्ति नहीं देना चाहते, क्योंकि भक्त कृष्णाकर्षणी च, कृष्ण को भी आकर्षण करते हैं। इसलिए भक्ति इतना दुर्लभ है। तो आगे दो जो मैं कल 16, 17, 18, 19, 20 मैं 5-6 दिन रहूँ, 6 दिन तक रहूँगा। तो हम क्लेशग्नि और शुभदा के बारे में कल और थोड़ा विचार करेंगे, नहीं तो आज भी हम थोड़ा, नहीं आज ठीक है, कल हम क्लेशग्नि शुभदा को और आगे जाकर हम और जो है सुदुर्लभा, उसके पश्चात मोक्ष लघुतकृत, उसके पश्चात कृष्णा का सांद्रानंद विशेषात्मा और मोक्ष लघुतकृत, इस विचार इसके बारे में हम विचार करेंगे। ठीक है, तो क्लेश का विनाश हो गया है, क्लेश का सत्यनाश हुआ है, बहुत अच्छा। अगर कोई भी क्लेश आया तो भगवान के सामने जाकर बताना, भगवान ये मुसीबत आ गया क्या करेंगे बताओ, क्या करूंगा। भगवान के पास प्रार्थना करने से आपको पता चलेगा क्या होता है। किसी को कोई मुसीबत आया है, आने के बाद भगवान के पास जाके प्रार्थना किए हैं, करने से क्या हुआ, भगवान के पास प्रार्थना करने से उसका उपशम हुआ है, उसका नाश हुआ है, स्थिति का परिवर्तन हुआ है, ना कि अचानक एक्सीडेंटली हो गए। भगवान के पास प्रार्थना किया था, पर जब सब सुधर गया तब हम सोचने लगा वो ठीक है चलो ऐसे भगवान ने किया, हम ही कुछ कर लिया था, हमारे करने से या नहीं तो ऐसे कुछ कारण से ये हो गया है, ऐसा कभी नहीं सोचना। हमारा जीवन में हमें कैसे, भक्ति के जीवन में हमारा विचार कैसा होना चाहिए, जो कुछ अच्छा होता है भगवान के कृपा से हो रहा है, और जो कुछ बुरा हो रहा है वो मेरा बदनसीब के कारण हो रहा है, मुझ मैं पहले बुरा काम किया है उसके कारण हमें कष्ट मिल रहा है और ये मिल रहा है। तो ये भक्तों का भावना ऐसा है। अगला संडे को भगवान का और जो भक्त नहीं है उन लोगों ने कैसे सोचते हैं, जो भक्त नहीं है वो कैसे सोचते हैं, जो कुछ भला हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है और जो खराब हो रहा है वो कृष्ण के कारण हो रहा है। जो कुछ मुसीबत है, तकलीफ है, कठिनाई है, उसके लिए हम कृष्ण को इल्जाम देते हैं। अगर कृष्ण है तो भगवान है तो हमारा क्यों ऐसा हो, कभी नहीं ये सोचता है कि मैं जो जो कुछ हो रहा है मेरा कर्म के अनुसार हो रहा है। पर हम जो भगवान को शरण लिए हैं इसलिए जो कुछ कठिनाई आ रहा है असल में और ज्यादा होना चाहिए था। भगवान को भक्त बनने के कारण वो थोड़ा सा कठिनाई से उसका नाश हो रहा है। ठीक है, और जब भला होता है तो भगवान को ही कृपा से उसको ग्रहण करना, कृपा के रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। तब हम क्या, तब हमें फायदा क्या होगा कि हर समय हम भगवान को शरण में रह सके। और जीवन का असल उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मृत्यु के समय भगवान को याद करना। अगर हम मृत्यु के समय भगवान को याद करते हैं कर सकते हैं तो उससे फायदा क्या होता है। मृत्यु के समय भगवान को याद करने से हम भगवान के पास वापस जा सकते। इस जीवन में हम क्या क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, भगवान के पास जाने का कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कोशिश हम कर रहे हैं उसका सफलता कैसे मिलेगा, जब हम भगवान के पास वापस चले जाए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? Does anyone have any question? भीम क्यों नहीं मना? अमर अमृत, ये जो नागलोक का जो अमृत है, देखो ये भौतिक जगत में तो कोई भी अमर नहीं बनता है। अमर का मतलब है बहुत दिन तक जिंदा रहता, इतना दिन तक जिंदा रहता है कि साधारण दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि वो अमर बन गया। परंतु देवताओं भी उसका उसको भी मृत्यु होता है, मतलब इस भौतिक जगत को छोड़कर जाना पड़ता है। जब ये भौतिक जगत नष्ट हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, तब क्या होगा? तब भौतिक जगत, जब सारे जगत जब नष्ट हो गया तब यहां से जाना पड़ेगा, है ना? तो कहाँ जाएंगे? भौतिक जगत से छोड़कर। परंतु जिसको चेतना भौतिक जगत में रहता है वो लोग सुषुप्ति में गिर जाते हैं। सुषुप्ति का मतलब एक गहरा निद्रा, सो जाते हैं, नींद दीर्घकाल उसका, एक मृत्यु एक प्रकार का निद्रा है। मृत्यु और निद्रा एक ही तरह है। मृत्यु और निद्रा में फर्क क्या है? निद्रा के पश्चात हम सुबह जब उठते हैं हम ये शरीर में जाग जाते हैं, इस शरीर में हम जागते हैं। और मृत्यु के पश्चात क्या होता है? दूसरा शरीर में हम जागते हैं। और ये शरीर त्यागने का बाद और शरीर ग्रहण करने के, ये दोनों का बीच में जो समय है वो समय निद्रा जैसा है, सो जाते हैं, जिसको सुषुप्ति कहा जाता है। सुषुप्ति गहरा नींद, बहुत गहरा नींद। तो हम सब सोना चाहते हैं, हम सोने को पसंद आता है ना, हाँ नींद हम बहुत पसंद करते हैं। तो अगर हम नींद पसंद करते हैं तो मृत्यु से हम क्यों डरते हैं? नींद अगर पसंद करते हैं तो मृत्यु भी तो एक बहुत बढ़िया निद्रा है, सबसे बढ़िया निद्रा है मृत्यु, तो उससे हम डरेंगे। पर हम भगवान के पास वापस जाने का कोशिश करना चाहिए। यस पार्वती। अच्छा, ये जो एक लोक से और दूसरा लोक अलग जगह में है, एक एक जगह परंतु ये नदी जो है जमुना, जैसे गंगा और जमुना, गंगा एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। गंगा का शुरू, गंगा का उत्पत्ति कहाँ हुआ है? नहीं, शिवजी के भी नहीं, ये पृथ्वी का, ब्रह्मांड का जो आवरण है उसके पारे, उसके परे हैं विराजा या कारण समुद्र। वो कारण, वो वामन देव के पैर के, पैर के स्पर्श से ब्रह्मांड का आवरण टूट गया था, और थोड़ा कारण समुद्र, कारण उस, वहां से कारण बाड़ी आकर उनका पैर में गिरा था और पैर धोआ था। तो वो था भगवान का पादोदक, पैर का पानी। पैर धोने के पश्चात भगवान का पैर वहां पर तक पहुंचा था और कारण बाड़ी, कारण समुद्र का पानी वहां पर आया, आके भगवान को पैर को धोआ था। इसलिए शिवजी अपना मस्त सर पे उसको धारण किया, क्योंकि ये भगवान का पादोदक है। और शिवजी के सर से गंगा इस भौतिक जगत, इस पृथ्वी पर आया। इसके पहले जो सबसे ऊपर कौन से लोक है? सत्य लोक। सत्य लोक के बाद, हाँ, तपलोक। तपलोक के बाद जनलोक। जनलोक के बाद तप, महरलोक। महरलोक के बाद स्वरलोक, उसके पश्चात भूवरलोक, उसके पश्चात भूलोक, ये पृथ्वी, और पृथ्वी के पश्चात तल, अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल और पाताल। तो ये सात पाताल लोक। तो एक लोक से एक लोक, दूसरे लोक में गंगा ऐसे मेरु से मेरु तक जा रहा था, पर इस पृथ्वी में गंगा पृथ्वी के ऊपर बह रही है। क्यों? भागीरथ के कारण। भागीरथ ने इस गंगा को इस भौत, इस पृथ्वी पर लाए थे। और पृथ्वी के बाद गंगा सागर में, गंगा कहाँ जा रहा है? वहां से गंगा पाताल लोक में जा रहा है। ठीक है, ओके। तो ऐसे गंगा बह रही है, जमुना भी वैसे नीचे जा रहा है, पृथ्वी से, भूल लोक से पाताल लोक में गई। तो इसलिए भीम भी वो जमुना में बहते हुए पाताल लोक में पहुंच गया। तुम क्या कर रहे हो? तो अगर तुमको आनंद मिला है तो दूसरे को जाके बता, तुम क्यों भोग, कष्ट भोग रहे हो? आओ भक्ति करो, देखो कैसा लगता है ना। इसलिए प्रचार करना चाहिए भगवान। अगर तुमको कुछ मिला है तो तुम क्या करोगे? उसके अपने पास रख लोगे या दूसरे को भी बांटोगे? तो आप लोग सब कर रहे हैं, बांट रहे हैं, बांटना चाहिए। पहले शुरू शुरू में क्या करना चाहिए? जो मंदिर में जो आ रहे हैं उनको देना चाहिए, है ना। उसको बहुत सारे आदमी आते हैं, उसको पता नहीं है क्यों मंदिर में आते हैं। वो सोचते हैं चलो इसको ने बहुत बढ़िया मंदिर बनाया, चलो देख के आते हैं। पर हम लोग क्यों उनको लाने का कोशिश कर रहे हैं? उन लोग को क्यों कोशिश कर रहे हैं लाने का? ताकि उन्होंने, उनको भक्ति मिलता है, भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का मौका, अवसर मिलता है। इसलिए हम उनको यहाँ लाने का, हम जो मंदिर बनाए क्यों बनाए हैं? ताकि बाकी सारे आदमी को भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का अवसर। तो ये अवश्य सबको देना चाहिए। हरे कृष्णा। तुम्हारे कोई प्रश्न छिल रघुनंदन? जैसे निद्रा में स्वप्न होता है तो वैसे ही मृत्यु के पश्चात भी, जैसे नींद में हम जैसे सपनों देखते हैं तो वैसे ये एक सपना जैसा उसको ये होता है, उसका अनुभव होता है। पर इसमें अंतर क्या है, सपना और मृत्यु के पश्चात जो नरक का दंड या स्वर्ग में आनंद, मजा, सुख, ये दोनों में अंतर क्या है, सपनों और ये मृत्यु के पश्चात जो अनुभव? अंतर केवल ये है कि हम जब सपना देखते हैं तो सपनों से हम इस शरीर में जाग उठते हैं, इस शरीर में जागने का अवसर मिलता है, तब क्या होता है, सपना टूट जाता है, हम इसमें जाग जाते हैं। परंतु मृत्यु के पश्चात जो ये सूक्ष्म शरीर में जो अनुभव होता है उससे जागने का कोई अवकाश या अवसर नहीं होता, जो होता है होता ही रहता है। तुम ख्वाब देख रहे हो कि एक शेर आकर तुमको खा रहा है, तब तुम क्या करते हो, डर के मारे तुम चिल्लाकर जाग जाते है ना, तब सपना टूट जाता है। जागने का मतलब क्या है, उस अनुभूति के स्तर से तुम इस शरीर की अनुभूति के स्तर में आ जाते। परंतु जब ये शरीर नहीं रहेगा तब क्या होगा, तब जागने का कोई अवसर मिलेगा नहीं, तब वो सब जो तब वो जो सब उस यद्यपि वो सपना जैसा है परंतु वो सपना नहीं होगा, वो सच्चाई है। केवल जागने का एक अवसर रहेगा, जागने का उस समय उस स्थिति से जागने का केवल एक अवसर है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जो साजा देने वाला है, दंड देने वाला है, वो है जमराज, और जमराज को जो साजा देने के लिए जो जमदूत है, जमराज जमदूत को बताया कि जब भी तुम हरि नाम को सुनोगे तभी उसको छोड़ देना, बस उसको प्रणाम करके बस। और जमराज भी देखेंगे, अरे ये तो भक्त है, ये हरि नाम कर रहा है, चलो इसको सारे पाप से उसका छुटकारा हो जाएगा। और वो अपना घर में बुला के बाद में भगवान के पास भेज देंगे। तो अगर मृत्यु के समय में अगर भगवान को नाम को याद नहीं आया पर बाद में भी अगर याद आया तो भी काम होगा उससे। तो आप बताओ, ये भगवान का नाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान का भक्ति कितना दुर्लभ है, इसके हम विचार बाद में करें। यस स्निग्धा।
जैसे मरने के बाद जो तो आत्मा है या जो तो शरीर है वो यमराज के पास जाएंगे, जो मतलब दुष्ट आत्मा है, तो मैं जब उनको पनिशमेंट दे जा रहा वहां पे तो उसकी बात क्या होगा?
मैं जो बताया, अगर तुम हरि नाम को याद किया तो सारे पनिशमेंट का खत्म हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। अच्छा, क्या होता है संक्षेप में, या आज मैं बता रहा हूँ, बाद में मैं विस्तृत रूप से उसका वर्णन करूँगा। तुम्हारा कितना शरीर है पता है तुमको, कैठो शरीर है, दो, एक तो आत्मिक आत्मा का शरीर है, एक है भौतिक शरीर, और ये भौतिक शरीर का भी शरीर भी दो दो प्रकार का होता है। एक है स्थूल भौतिक शरीर जो ये पंचभूत से बना हुआ है, मिट्टी पानी अग्नि वायु आकाश, ये है ये शरीर। और उसके परे है मन बुद्धि और अहंकार के द्वारा बना हुआ सूक्ष्म शरीर। तो मृत्यु के पश्चात ये स्थूल शरीर का त्याग होता है। मृत्यु के समय हम स्थूल शरीर त्यागते हैं, परंतु सूक्ष्म शरीर हमें हमारे साथ रह जाता है। तो ये सूक्ष्म शरीर में या तो दंड भोग होता है जमालय में, नहीं तो स्वर्ग लोक में सुख मिलता है। हम अगर पुण्य कर्म करते हैं तो स्वर्ग लोक में जाते हैं, हम अगर पाप कर्म करते हैं तो दंड मिलता है जमालय में, जमराज के नरक में। ये जो है वो सूक्ष्म शरीर का होता है। अच्छा, ये सजा मिलते मिलते क्या होता है, हमारा जो मनोभाव उसका परिवर्तन होता है। एक तो सजा मिलने के बाद वो सोचता है कि मैं अब कभी ऐसा काम नहीं, बुरा काम नहीं करूंगा, ये सोचकर ये उसका मनोभाव का परिवर्तन होता है। तब उसके पश्चात उसको और एक शरीर मिलता है, और नहीं तो ये सजा मिलते 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 उसका मनोभाव का ऐसा परिवर्तन होता है कि ऐसा ही बन जाता है। जैसे देखो, कोई जानवर है तो ये सूक्ष्म शरीर का उसका गठन, एक पाप काम के कारण उसका सूक्ष्म शरीर का गठन वो एक जानवर की तरह बन गया है ना। और जानवर के शरीर ये रूप कार्य करते करते और सजा मिलने के पश्चात उसको या तो उसका रेक्टिफिकेशन हो जाता है, नहीं तो अगर वो सजा मिलने के पश्चात उसको मनोभाव का परिवर्तन नहीं होता है तब उसको एक जानवर का शरीर मिलता है। वो सूक्ष्म शरीर का पर गठन तब पक्का बन के एक स्थूल शरीर का प्राप्ति होता है। तब जैसे एक जानवर, जैसे एक कुत्ता का जैसा शरीर मिल गया है तो वो सोचता है कि मैं कुत्ता हूं, और कुत्ता जैसे वो आचरण करने लगता है, क्यों, पाप कर्म के कारण। तो इसलिए पाप काम नहीं करना चाहिए। और सारे पापों से मुक्ति की प्राप्ति के सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, भगवान को शरण लेना। भगवान क्या बोल रहे हैं गीता में, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम अगर मेरे शरण में आ जाओगे तो तुमको मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ठीक है, तो हम अगर पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान को शरण लेना चाहिए। तो भगवान को शरण ले रहे हो, बहुत अच्छे, बस तब जमराज तुमको नहीं लाएंगे। बोले जमराज बोलेंगे ठीक है स्निग्धा, तुम बहुत अच्छे भक्त हो, तो तुम मेरे दोस्त हो, और अगर तुम जमराज के साथ मुलाकात हुआ भी तो जमराज तुमको एक भक्त के रूप में तुमको दर्शन कर सजा देने वाला दंडदाता के रूप में, भक्त के रूप में, क्योंकि जमराज भी महाजन है, जमराज भी भगवान का भक्त है। तो एक भक्त के साथ जब दूसरा भक्त का मुलाकात होता है तो क्या होता है, वापस में मदचित्त मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब भक्त के बीच मुलाकात होता है, भक्त कौन है, जिसका मनोभाव भगवान के प्रति आकृष्ट हो गया है, तो उन्होंने जब मिलते हैं तो तो एक दूसरे के साथ केवल भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं। कथयंतश्च मांगनितम, मेरे बारे में बातें करते हैं। और इस बातें करने से उनका मन का रमन होता है, मन में आनंद आता है और पूर्ण रूप से वो संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान के भक्त का संतुष्टि का कारण क्या है? भगवान के बारे में चर्चा करना। ठीक है, तो देखो भगवान का भक्त बनने से कितना फायदा होता है और भगवान का भक्त नहीं बनने से कितना नुकसान होता है। तो जो भगवान का भक्त है वो उसका भाग्य बहुत मंद है और जो भगवान का भक्त बनते हैं वो बहुत सौभाग्यशाली या सौभाग्यशालिनी बनते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा से भक्त का भगवान का भक्त बना। ओके, आरती शुरू हो गए। जस्ट गो टू द आरती एंड आफ्टर आरती आई कम एंड विल हैव समथिंग। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की।